This is Feeney, and I'm pleased to bring you a Season 3 interview on movement leaders in Hindi. Yadav is a South Asian movement leader that has seen God spark miraculous movements of disciples and churches. In this interview, we'll hear real testimonies to how Yadav is partnering with the Holy Spirit to pursue the multiplication of such movements. You'll notice a particular focus on leadership development. If you'd like to hear more on movement leadership in English, check out other interviews in Season 3. Thanks a lot.
So, Yadav ji, Jai Masih ki.
Jai Masih ki.
Aur achha laga aapse dobara milkar aur aapki sevkai ke bare mein jo maine suna jana aur aapke saath kafi samay se kaam karne mein bhi bahut achha laga aur abhi hum kar bhi rahe hain ek saath par ye mujhe saubhagya mila ki main aapka interview le sakun aur mujhe kuch sawal aapse puchne hain visheshkar taki ye sawal jo hain जिनके आप जवाब देंगे ये जो हमारे आने वाली पीढ़ी में जो लीडर्स हैं अगुवे हैं है ना उन तक ये बात जो है पहुंच सके ताकि किस तरीके से आपने कलीसिया की शुरुआत करी किस तरीके से आपने आंदोलन को पैदा किया किस तरीके से आपके अगुवे बढ़ रहे हैं इनके ऊपर मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ ठीक है तो क्या आप तैयार हैं
जी तैयार हूँ
ठीक है यादव जी बहुत बहुत धन्यवाद तो मेरा पहला सवाल जो है वो ये है कि आपने सीपीएम आपको सीपीएम से कैसे परिचित हुए आपको इंट्रोड्यूस किसने कराया सीपीएम में या जो चर्च प्लांटिंग मूवमेंट है या कलीसिया रोपण आंदोलन जो है ना उससे आप कैसे परिचित हुए उसके बारे में आप बता सकते हैं
जय मसीह की परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मैं पहले फिल्म प्रोजेक्ट में सेवा किया बैंजलिस्ट के रूप में और कहीं ना कहीं जब हमें उसमें मौका मिलता था कि आप इसको लोकल चर्च को हैंडओवर करना है इंट्रोड्यूस तो कहीं ना कहीं पवित्र आत्मा मुझे प्रेरित करता था कि मैं स्वयं इन लोगों को डिसाइपलशिप करूं और फिर परमेश्वर की दया से 1996 से मैंने हाउस फेलोशिप स्टार्ट किया लेकिन मेरा विजन था एक कलीसिया हो और इमारत हो और उसमें सारी सुविधा हो इस पृष्ठभूमि से भी मैं आता रहा इस कारण ऐसे मैं सोचता था लेकिन 2013 में ब्रदर मुझे ये आंदोलन के बारे में फोर फील्ड के ट्रेनिंग में जाने का सौभाग्य मिला और जब मैंने फोर फील्ड ट्रेनिंग को देखा लिया और तब मेरे अंदर परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा का काम शुरू हुआ और हम विजन हमारा बढ़ने लगा जैसे हाबकूक 2:14 के अनुसार मत्ती 28:18-20 के अनुसार और इस माध्यम से वहां से हमारी कलीसिया रोपण हुआ और पहली बार जब हम लूक 10 के लिए गए पहला दिन और मुझे एक एरिया दिया गया ब्रदरे के माध्यम से और जब हम लूक 10 किया पहला दिन तो पवित्र आत्मा ने वहां पर इस्तेमाल किया परमेश्वर ने 3 शांति प्रिय व्यक्ति को घर खोला और फिर हम उसी वीक में दोबारा हम उनको फॉलो किए और फिर देखा कि पहले दिन 2-3 लोग बैठे लेकिन जब फॉलो के लिए गए तो कुछ उनके रिलेटिव लोग आए और इस तरह से वन वीक में परमेश्वर की दया से हम लगता है 4 कलीसिया उस जगह शुरुआत हो गई 5 डे के अंदर और फिर परमेश्वर के आत्मा ने प्रेरित किया उनके द्वारा वो क्रॉस के द्वारा और जगह में हम जा पाए और इस तरह से आंदोलन में हम सम्मिलित हो पाए और परमेश्वर समय समय पर हमें अच्छे मेंटर्स के माध्यम से गाइडलाइन दिया गया और समय समय पर हमें नई नई चीजों को सीखने में परमेश्वर ने मदद किया और जो भी हम सीखे वो हम अपने जीवन में अप्लाई किए एक होता है नॉलेजल लेकिन मैं जो भी सीखा वो अपने फील्ड में विश्वास योग्यता के अनुसार सिखाने में विश्वास किया और हम देख पा रहे हैं कि परमेश्वर का काम हो रहा है कलीसिया अलग अलग कॉलोनी में अलग अलग ब्लॉक में नई नई कलीसिया आ रही है और ये हमारे जो चेले हैं परमेश्वर ने जो दिया है वो लोग भी इस काम को आगे कर पा रहे हैं।
हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश भाई।
जी,
और
अभी आवाज आया, पिछले बार नहीं था। जी
सॉरी सॉरी, और बहुत बहुत बढ़िया प्रकाश भाई, आपने बहुत अच्छे से समझाया। और इसी से जुड़ता हुआ मेरा एक सवाल है ना, कि क्या आप हमें एक कहानी बता सकते हैं जिसने सीपीएम को आगे बढ़ाने की आपकी इच्छा पर बहुत असर डाला? कोई भी एक कहानी जो आप अपने सुनने वालों को बता सकते हैं, है ना, जो प्रभु की
जी
सेवकाई कर रहे हैं।
जी जी जब मैं मतलब लुक 10 के लिए गया तो वहां पर हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं कि जिस घर में जाओ परमेश्वर के को शांति इस घर में आ जाए। तो मेरा अनुभव ये रहा जो मुझे बहुत प्रभावित किया, और वहां लिखा है बीमारों को चंगा करो। तो पहला दिन एक फैमिली में हम गए और वो परिवार में उनकी वाइफ को रसौली बीमारी से पीड़ित थी, और हम लोगों ने प्रार्थना किया और प्रभु के आत्मा ने वहां उनको छुआ और उनको चंगाई मिला। और वो जब चंगाई पा गई तो इतना आनंद से वो भर गई कि अपने रिलेटिव को बिना मेरे बताइए हुए बिना बताए हुए नेक्स्ट वीक जब हमने टाइम लिया कि अगली बार हम कब मिलेंगे, तो उसने और भी लोगों को अपने घर पे बुलाई कि हमारे घर में एक परमेश्वर का जन आएंगे जो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, मुझे चंगाई मिला है तो आप लोग भी आइए। और इस तरह से वहां पर मैं सोचता हूँ कि 10 लोग अलग अलग क्षेत्र से उनके घर में आया और उन लोगों के लिए भी प्रार्थना किया, और वो लोग भी परमेश्वर की उपस्थिति में पवित्र आत्मा ने उनको छुआ और एक डेवल से मतलब दुष्ट आत्मा से ग्रस्त सिस्टर थी उनको चंगाई मिला, और रसौली बीमारी से चंगाई मिला, और पथरी से बार बार अस्पताल जाना वापस आना उनको चंगाई मिला। और इस तरह से अलग अलग कॉलोनी में उनके माध्यम से परमेश्वर ने द्वार खोला। तो ये मेरा बिगिनिंग कलिसिया रोपण के अनुभव रहा और परमेश्वर ने वहां पर इस्तेमाल किया।
धन्यवाद प्रकाश भाई, बहुत अच्छा आपने कहानी के माध्यम से हमें समझाया। मेरा तीसरा सवाल भी अगुओं को लेकर है ना, और मेरा सवाल यह है कि एक संभाविक अगुवे में आप उन्हें सलाह देने से पहले क्या देखते हैं?
हम सलाह
जब
देने से
उनका, कहने का मतलब है, जब आप उनको मेंटरशिप देते हो, है ना, आप उनको बढ़ा रहे हो, है ना, तो किस तरीके से उनके अंदर पहले आप क्या देखते हो?
कि वो मतलब हमारे कोचिंग के लिए वो तैयार है या विश्वास योग है, और फिर उस बात को अपने क्षेत्र में विश्वास योग्यता से या खेत के प्रति कह लीजिए या सेवा के प्रति उनके अंदर विश्वास योग्यता है कि हम विश्वास के योग्यता के अनुसार वो कर रहे हैं, और जो बातें मतलब हम उनको सिखाते हैं वो आगे विश्वास योग्यता से आगे वो पास करते हैं। 2 तीमुथियुस 2 अध्याय उसकी 2 आयत के अनुसार वो चीज हम देखते हैं।
और भी इसको बहुत अच्छे से आपने बताया, और इसी से ही एक जुड़ता हुआ सवाल भी है मेरे पास, कि आप जब नए अगुओं को कैसे मॉडलिंग करते हैं, कैसे विकसित करते हैं उनको? अब आप उनको
उनको
सलाह तो दे रहे हो, पर
हाँ
विकसित कैसे कर रहे हो आप?
उनको लक्ष्य लक्ष्य देते हैं कि इस हफ्ते में आपको ये लोगों इतने मतलब वो कास्ट बनाना है, लिस्ट तैयार करना है, प्रेयर करना है, और जाकर अपने जान पहचान लोगों को शुभ समाचार सुनाना है, और फिर गैदरिंग को एक जगह इकट्ठा करना है जहाँ शांति का घर मिल जाए, वहां पर लगातार 7 आज्ञा जाकर उनको सिखाना है। और इस तरह से उनको जिम्मेवारी हम सौंपते हैं और देखते हैं जब जिम्मेवारी उनको हम दे दिए हैं, अधिकार दे चुके हैं, तो वो अच्छे से आगे कर पा रहे हैं, कर लेते हैं।
धन्यवाद। इसी से ही मेरा जुड़ता हुआ बिल्कुल ऐसे ही सवाल है, और जब नए अगुवे को विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण सीख क्या है आपके लिए?
महत्वपूर्ण बात है। अच्छा, बस विश्वास योग्यता उनका देखते हैं, और परमेश्वर का जो विजन है उस विजन में करने के लिए, उनके अंदर प्रभु का आज्ञा मानने के लिए, प्रार्थना का जीवन, और परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत कैसा समय वो बिता रहे हैं, ये सारी बातों को देखते हुए, जैसे मरकुस रची 4 अध्याय में नया विश्वासी, वहां पर बिल्कुल नया विश्वासी था यूहन्ना रची 4 अध्याय में, सामरी स्त्री, उसका उदाहरण हम देखते हैं। क्या ये व्यक्ति के अंदर उस प्रकार का गुण है, उस प्रकार का इच्छा है, और इस तरह से हम उनको बाइबल से भी तुलना करते हैं और फिर हम उनको विकसित करते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही कोई उदाहरण दे सकते हैं इसी में, है ना, कि किस तरीके से आप करते हो, कोई भी
जी
एक उदाहरण अगर देना चाहोगे।
जी जी तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक बहन है जिनका नाम संगीता था, अभी वो नहीं रही, लेकिन जब प्रभु ने उनके घर में शांति के लिए उनका घर खोला, तो उन्होंने अपने सारे रिश्तेदार जो दूर दूर में रहते थे, अलग अलग क्षेत्र में, कोई 10 किलोमीटर, कोई 8 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, इन सारे जगह लोगों को बीच में वो इतना उत्साहित हो गई कि वो परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए गई, और प्रभु ने उनको इस्तेमाल किया। और भी एक और सिस्टर है जिनका नाम रितु है, वो भी इस तरह से उसने अपने ससुराल में, अपने बुआ के घर में, और अपने मायके, मतलब जहाँ मम्मी का घर है, इन सारी कॉलोनियों में जाकर बहनों के घर में वो परमेश्वर का वचन को लेकर गई, और प्रभु ने उनको इस्तेमाल किया उनके लिए, उन सारी जगह में द्वार खोला, और आज उन सारी जगह में कलीसिया है जो प्रभु की आराधना कर रहे हैं। और एक भाई ने मुझे सिखाया था कि जब विश्वासी लोग बता रहे थे कि जब जाएंगे नए लोग तो उनका पांव कितना सुहाना है, और गॉस्पल का, शुभ समाचार का पैर लेकर जाएंगे, और मैंने उस बहन के जीवन में देखा कि प्रभु कितना महान परमेश्वर है, कि हम सोचने से बढ़कर पवित्र आत्मा और प्रभु की उपस्थिति अपनी महिमा को प्रकट करता है लोगों के बीच में।
धन्यवाद यादव जी। और एक एक मैं सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ। आपने कहा था कि जब आप ये कहते हैं उसको कि आप उनके साथ धीरे क्यों चलना चाहते हैं, है ना, मतलब धीरे क्यों बोलते हैं कि आप धीरे बढ़ने के लिए उनको या तेज। अभी एक सवाल आया था आपका इसी से रिलेटेड कुछ,
अच्छा,
और ये जरूरी क्यों है कि आपको स्लो जाना है उनके साथ, धीरे जाना है, क्या मतलब था इसका?
वो तो प्रभु का आत्मा जैसा अगुवाई करता है उस समय स्लो भी करते हैं और तेज भी करते हैं, ये तो पवित्र आत्मा के कंट्रोल में करते हैं, लेकिन उनको हम थोड़ा सा गाइडलाइन देते हैं कि ज्यादा, मतलब वो करने से कभी कभी शैतान अटैक करता है, इसलिए हमें बहुत ध्यान से और बहुत विश्वास योग्यता से प्रेयर के साथ हमें इस शुभ समाचार के कार्य को, कलिसिया स्थापना रोपण के कार्य को हमें समझ बूझ कर प्रभु के अगुवाई में करना है।
थोड़ा मैं और गहराई से जानना चाह रहा हूँ कि क्या आप हमें कुछ ऐसे उदाहरण दे सकते हैं कि आपने अपने अगुओं को कैसे विकसित आप अपने अगुओं को कैसे विकसित करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है ना। और अगर है तो कोई अगर एक दो कहानी अगर आप बता सकते हो तो अच्छा रहेगा।
जी, तो हम लोग अगुओं को साथ विकसित करने के लिए जो अवेलेबल, मतलब वो हमारे लिए, या मतलब कोचिंग, मतलब लेन सीखने के लिए वो तैयार हमेशा रहते हैं, और अपने क्षेत्र के प्रति, अपने सेवा के प्रति, विश्वास योग्य हैं, और जो भी हम उनको काम या जिम्मेवारी हम सौंपते हैं वो 100% निभाने के लिए कोशिश करते हैं, फिर ऐसे लोगों के साथ हम ज्यादा समय उनको उत्साहित करते हैं और इस तरह से हम उनको विकसित करते हैं, धीरे धीरे उनको जिम्मेवारी हम और सौंपते जाते हैं, फिर 139 में उनको हम शामिल करते हैं, शुभ समाचार का जो गोल होता है, लक्ष्य होता है, उनको हम डिवाइड करते हैं टारगेट, और फिर उनका फॉलोअप करते हैं और हम देखते हैं कितना वो कर पा रहे हैं, कितना उनके अंदर क्षमता, कितना पवित्र आत्मा उनको इस्तेमाल कर रहा है, कितना वो ओबीडियन है परमेश्वर के काम के प्रति।
बहुत बढ़िया यादव जी, और जैसे अभी आप बता रहे थे फैट के बारे में, है ना, आप जो ये फैट है ना, FAT है, इसको कैसे यूज करते हो, कैसे ढूंढते हो लीडर को, कैसे ढूंढते हो, है ना, कि वो विश्वास योग्य है, वो हमेशा रहता है आपके पास, अवेलेबल है ना, या वो दूसरों को सिखा सकता है, क्या तरीका है आपका, क्योंकि जरूरी है ना हमें जानना।
जब हम बुलाते हैं, ठीक है, वो हमेशा तैयार रहे, कोई बहाना स्क्वीज वगैरह ना बनाए, तो हम ये इसको प्रायोरिटी देते हैं कि हम जब भी उनको बोल दें आज फलाने तारीख को फलाने दिन में यहाँ पर मीटिंग है और वो वहाँ पर अवेलेबल हो, फिर हम जो भी मतलब अपने सेवा के प्रति या जो परमेश्वर ने उनको काम या सेवा दी है उस सेवा के प्रति बिल्कुल विश्वास योग्यता के साथ वो करता है, और हमें अकाउंटेबिलिटी के पार्ट में वो हमें अकाउंटेबिलिटी में जब वो बताते हैं तो हमें पता चलता है कि ये परमेश्वर इनको इस्तेमाल कर रहा है, और जो भी हमने शिक्षा उनको सिखाया वो हम उनको बोलते हैं कि आप इनको मिनिमम 3 लोग या 5 लोग को इस हफ्ते में जाकर आपको सिखाना है, और फिर जब हम अकाउंटेबिलिटी के समय में पूछते हैं क्या आपने वो लेसन परमेश्वर ने आपको किन्हीं के बीच में इस्तेमाल किया, किनको सिखाया, कैसा रहा, क्या हुआ सीखने के बाद, इस तरह से हम क्या वो नीचे नीचे जा रहा आपके नीचे चेले के द्वारा और चेलों के द्वारा वो नीचे तीसरे चेलों के द्वारा जा रहा, ये वो सारी बातें, तो इस तरह से हम उनका लेखा जोखा कह सकते हैं, अकाउंटेबिलिटी लेते हैं।
बहुत बढ़िया यादव जी, और अभी आप एक बात बोल रहे थे 139 है ना, मालूम होना चाहिए 139 है ना, पर आप अपने सुनने वालों को बता सकते हैं ये 139 का क्या मतलब है, और आप अपने 139 के माध्यम से है ना कैसे अगुओं की बढ़ोतरी करते हो?
तो 139 है ये परमेश्वर के द्वारा एक अच्छा हमारे लिए या हर एक अगुआ के लिए एक अच्छा उदाहरण है, अगर हम देखें तो यीशु ने भी इस सिद्धांत को हमारे बीच में दिया, प्रभु पहले क्रोध के साथ और फिर नीचे उनका जो क्रोध को छोड़कर वो नीचे उतरे, जैसे 5,000, 4,000, 500, 120, 70, फिर 12, फिर 3, फाइनल प्रभु ने 3 के साथ ज्यादा समय बिताए, और अगर हम देखें तो ग्राफ प्रभु का वो नीचे आया लेकिन चेलों के द्वारा वो 3 के द्वारा वो जो ग्राफ है वो ऊपर गया, तो ये हमारे लिए बहुत आशीष का कारण रहा कि 139 मीटिंग जो है चेलों को परमेश्वर के राज्य में बढ़ाने के लिए एक सुंदर अवसर है, और जैसे मत प्रेरितों के काम में भी अगर हम देख सकते हैं 14:20-23 में हम पढ़ते हैं कि पौलुस जहां जहां गया शुभ समाचार सुनाया, अगुओं को तैयार किया, कलीसिया के लिए लीडर पॉइंट किया, तो इस तरह से 139 एक बहुत आशीष का कारण रहा, और मैं शुरू किया पहले और फिर मेरे 3 चेले, फिर उन लोग वही पैटर्न को अपने अपने क्षेत्रों में उनके 3 उनके 9 इस तरह से, और उन्हीं लोगों को इस 139 में हम अनुमति देते हैं जो FBT जो लिखा, सॉरी, फेथ अवेलेबल, फेथफुल और टीचेबल, ये हमारा मॉडल है, ये हमारा सिद्धांत है कि इस क्षेत्र में वो तीनों में सही हैं, उन्हीं को 139 में हम प्रोत्साहन करते हैं, उत्साहित करते हैं। और इस तरह से कलीसिया की केवल लीडर की बढ़ोतरी नहीं होती, परंतु उनको गॉस्पल जो लक्ष्य हम देते हैं, जो उनको शुभ समाचार का जो टारगेट योजना बनाते हैं हर थर्ड मंथ में तीसरे महीने के लिए, तो उसमें भी उनको काफी इजी होता है टारगेट करने के लिए, और चेलों को भी टारगेट करने के लिए, और कलिशिया को भी स्थापना करने में बहुत आसान होता है।
यादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने बहुत अच्छे से बताया है ना, 139 के बारे में कैसे आप समझाया, बहुत बढ़िया से समझाया आपने। और मेरा आखिरी सवाल है आपसे, और फिर उससे रिलेटेड मैं और भी कुछ आपसे पूछूंगा। अब वो ये है कि जब आपके अगुवे है ना आपकी बराबरी तक पहुंचते हैं, होता है ना कई बार हम अगुवापन में जब लोगों को बढ़ाते हैं तो कई लीडर हमारे बराबर आ जाते हैं, कई बार हमसे वो ऊपर आ जाते हैं, है ना। तो कईयों के लिए बड़ा ये चिंताजनक हो जाता है ना। कई बार सोचते हैं यार हमारा जो अगवापन का जो लीडरशिप है ना, सेवकाई है, वो कहीं खराब ना हो जाए। तो जब आप आपके अगुवे आपकी बराबरी तक पहुंच जाते हैं तो यह रिश्ता कैसे बदलता है, आप उन्हें कैसे विकसित करना जारी रखते हैं, इसके बारे में अगर हमें बताइए तो बढ़िया
अच्छा,
रहेगा।
तो अगर हमारे बराबरी अगुवा बनता है तो ये बहुत खुशी की बात है, क्योंकि प्रभु का हम उदाहरण देखते हैं। प्रभु यीशु ने अपने चेलों को कहा कि जो विश्वास करेगा वो मुझसे भी बड़े बड़े काम करेगा, और इस तरह से प्रभु ने एक अच्छा नमूना हमारे लिए तैयार किया, एक अच्छा स्ट्रक्चर तैयार किया। तो हमें ऐसे जो हमसे भी बढ़ रहे हैं, तो उनको और उत्साहित हम करते हैं कि प्रभु आपको इसी तरह से आपको और ऊपर उठाए, कंटिन्यू विश्वास योग्यता के साथ, प्रेम के साथ आप इस काम में लगे रहें। और प्रेम हम शो करते हैं, लव प्रेयर करते हैं एक दूसरे के लिए, और कभी कभी मतलब बराबर फोन कर लेते हैं, अकाउंटेबिलिटी जान लेते हैं, कैसे हो, क्या अच्छा है, क्या चैलेंजेस आ रहा है आपकी सेवकाई में। इस तरह से हम उनके साथ व्यक्तिगत रिलेशन और विकसित करते हैं, उनका फैमिली के बारे में पूछना, उनके दुख में प्रार्थना करना, शामिल होना, और इस तरह से हम उनको अच्छा रिलेशन कायम कर पाते हैं, अच्छा रिश्ता बना पाते हैं।
थैंक यू यादव जी। और एक और सवाल है मेरा है ना, जब आप कलीसिया को बढ़ाते हो, अगवो का अगुणात्व तरीके से बढ़ा रहे हो है ना, कलीसिया रोपण कर रहे हो, तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं, तो आप चुनौतियां जिस तो आप हमें कुछ चुनौतियों जो बता सकते हो आप हमारे अपने दर्शकों को।
चुनौती हर हर चीज में चुनौती है, सेवा में भी इसी तरह से। जब हम अगुओं को, नए नए अगुओं को तैयार कर रहे हैं, कलिशिया के रोपण का कार्य बढ़ रहा है, तो चुनौती कभी कभी तो जो मेनलाइन चर्चेस के माध्यम से उनके द्वारा सताव का सामना करना पड़ता है अगुओं को, जैसे बाप्टिसम इशू आ जाता है, मैरिज इशू आ जाता है, और विवाह मतलब मैरिज बाप्टिसम दफनाने वाला इशू आ जाता है, अधिकार के बारे में आपने कहाँ से प्रशिक्षण लिया, कौन सी बाइबल कॉलेज का आपके पास डिग्री है, ये सारे चीजें मतलब कभी मेनलैंड कलीसिया के सदस्य के द्वारा या उस क्षेत्र के पास्टर के माध्यम से ये सारी चीजें का एक चुनौती है। और कभी कभी आजकल अभी जो उत्तर प्रदेश में सरकार के द्वारा भी एक चुनौती सामने आया है इसी महीने से या पिछले महीने से, ये भी चैलेंजेस है। कभी कभी फैमिली फैमिली के द्वारा सताव का सामना करना पड़ता है, मतलब समाज जो उनका गैर विश्वासी लोग हैं उनके द्वारा, तो इस तरह से सताव चैलेंजेस है। लेकिन ये सारा काम प्रभु का है और प्रभु की आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति में ये सारे चुनौतियों को एक तरफ करके आगे हम परमेश्वर को देखते हुए परमेश्वर के उपस्थिति में आगे हम लोग बढ़ने में प्रयास कर रहे हैं और परमेश्वर हमें मदद कर रहा है, सफलता भी दे रहा है और पवित्र आत्मा का काम इन दिनों में क्षेत्रों में देख रहे हैं, राज्यों में देख रहे हैं कि नए नए विश्वासी आ रहा है और प्रभु की महान आदेश को लोग पूरा कर रहे हैं। सात आज्ञाएं प्रभु की लोग मानते हैं और प्रभु के अगुवाई में परमेश्वर को महिमा हो रहा है सेवा के क्षेत्र में, अलग अलग नेटवर्क कह सकते हैं या अलग अलग स्ट्रीम में।
थैंक यू यादव जी। और ऐसे ही मैं पूछना चाह रहा था, एक और सवाल है, वो ये है कि हम देखते हैं कि यीशु मसीह का भी और पौलुस का भी अपने अगुओं के प्रति, मतलब उनका काफी एक प्यार था, हम देखते हैं ना जब हम सेवकाई में होते हैं। तो इसी सेवकाई को अगर हम बात करें, है ना, तो आप कैसे देखते हैं, मतलब अगर मान लीजिए पौलुस और तिमोथी का जो रिलेशनशिप था जैसे, है ना, उसको लेके आप कैसे इस रिश्ते को देखते हो, इस जब हम मिनिस्ट्री में हैं अगुओं को लेकर विशेषकर, किस
जी,
तरीके
तो
से
हमारे,
आपका।
हाँ, मैं अपने अगुओं को बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और अपना से बड़ा उनको समझता हूँ और हम उनके जैसे यीशु ने अपने अगुओं से सेवा नहीं कराया परंतु यीशु जी ने एक अच्छा उदाहरण दिया कि उन्होंने अपने सेवकों का पैर धोकर उनको रिस्पेक्ट किया। तो ये हमारे लिए एक अच्छा उत्साह की बात है कि प्रभु ने हमें अपने अगुओं के साथ सेवा करने का सौभाग्य दिया। तो एक सेवक जो है, जो सेवा का भावना है, से पवित्र आत्मा का सामर्थ्य परमेश्वर ने दिया है, तो वो उनका सर्व करे, प्रेयर के द्वारा हम सर्व कर सकते हैं, प्रेयर के द्वारा, वचन के द्वारा, और भी फिजिकली कुछ जरूरत है उसके द्वारा भी उनके सेवा कर सकते हैं, शरीर के द्वारा भी। कभी जैसे कुछ अगुओं को घर चेंजिंग कभी हो जाता तो बुलाते बताते तो हम चले जाते हैं वहां पर, उनकी जो भी होता है मदद करते हैं। तो ये व्यवहारिक जो रिलेशन है, मिलना, साथ में घूमना, कभी कभी छोटा सा तोहफा वगैरह, मतलब उपहार की भेंट देना, और उनका जो बर्थडे है, सालगिरह है, या कुछ ऐसा फंक्शन है, तो उसमें हम 100% उनके साथ खड़ा होते हैं और इस तरह से हम परमेश्वर का प्रेम उनको दिखाते हैं।
थैंक यू यादव जी। मेरा आखिरी सवाल आपसे वो ये है कि भारत को लेके आपका दर्शन क्या है पूरे भारत में, और ऐसी क्या चीज है जो आपके अंदर जो बोझ है ना, आपके लोगों के प्रति ऐसा क्या बोझ है जो कि आप जिस जो जोश आपको आगे लेके जा रहा है प्रभु का सेवकाई करने के लिए, और जो आपके
जी,
दर्शन को आगे बढ़ा रहा है।
तो अगर हम मैथमेटिक के अनुसार अगर हम देखें तो दर्शन में जोशुआ प्रोजेक्ट के माध्यम से मैंने ऐसा, उनका सर्वे के अनुसार ऐसा हमने सीखा है कि पूरे वर्ल्ड में 17,000 जातियां पाई जाती है, ऐसा उन लोग कहते हैं, और उनमें से 7,000 ऐसी जातियां हैं जहां पर परमेश्वर का वचन नहीं पहुंचा है और प्रभु का वचन कहता है कि कोई भी नाश ना हो, हर एक को उद्धार पाने का अवसर मिले। और प्रकाशित वाक्य 7:9 के अनुसार अगर हम देखते हैं तो वहां लिखा है, हर एक कुल, हर एक भाषा, हर एक जाति के लोग परमेश्वर के सामने या मेमने के सामने खजूर की डाली हुए लिए हुए आएंगे। और मत्ती 24:14 में लिखा है, ये राज्य के शुभ समाचार जब तक ले पूरी पृथ्वी में प्रचार ना हो जाएगा तब तक ले प्रभु की आगमन नहीं होगा। तो ये सारा वचन हमें प्रेरित करता है कि प्रभु ने हमारे जीवन में एक सुंदर मौका दिया कि हम उसके किंगडम में हमें उनके किंगडम को बढ़ाने में, सेवा को बढ़ाने में परमेश्वर ने हमें चुना, हमारे लोगों को चुना। तो क्यों ना उस परमेश्वर को दर्शन जो है पूरे भारत में ऐसे 2300 लगभग या 2200 ऐसी जातियां हैं जहां प्रभु का वचन नहीं पहुंचा है। तो ये बहुत बड़ा मात्रा है यहाँ पर, हमारे सोच सकते हैं 1 अरब 20 करोड़ की आबादी से बढ़कर हो गया होगा अभी। तो ऐसी मतलब 2300 पीपल ग्रुप है जहाँ परमेश्वर का वचन नहीं पहुंचा है। तो ये हमारे लिए सौभाग्य है, क्योंकि ये जीवन दोबारा हमें मौका नहीं मिलेगा, ये वन लाइफ है, और इसके बाद हमें शुभ समाचार सुनाने का मौका भी नहीं मिलेगा। तो ये बातें हम बोझ के साथ अपने देश के लिए, अपने राज्यों के लिए, ब्लॉक के लिए, जिला के लिए, कस्बा के लिए, गांव के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, और वो कि कोई भी जगह खाली ना रहे, कोई भी जाति शुभ समाचार से वंचित ना रहे, क्योंकि प्रभु का आगमन जब हम विश्वास योग्यता से हम लोग अपने देश के लिए बोझ के साथ प्रार्थना के साथ अगर हम ऐसा करेंगे तो प्रभु का आगमन जरूर हम लोग देखेंगे।
यादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके उत्तर के लिए, और आपने बहुत अच्छे तरीके से आपने अपने लोगों के लिए आपने जो जो चुनौतियां आपने जिनका का सामना करा, और किस तरीके से आपने सेवकाई को बढ़ाया है ना, और किस तरीके से आपने जो संभावित अगुवे हैं किस तरीके से उनके साथ आप देखभाल कर रहे हैं उनकी, और किस तरीके से आप उनको विकसित कर रहे हैं उन अगुओं को, और कैसे कैसे रुकावटों का आप सामना करते हैं, और विशेषकर जो दर्शन आप आगे लेके चल रहे हैं, उन्हें प्रभु परमेश्वर आपको आशीष दे। और ऐसे ही उत्तर मुझे चाहिए थे जो आपने, क्योंकि आप ये प्रैक्टिकल कर रहे हो है ना
जी
अपने क्षेत्र में, और यह बहुत बढ़िया आपने उत्तर दिए, और आशा करते हैं कि हमारे जितने भाई लोग हैं वो जरूर सुनेंगे, और आपके इन प्रश्नों से जो प्रभु ने आपके मन में डाला, जिस प्रकार आप सेवकाई कर रहे हैं ना, लोग उससे उत्साहित होंगे, प्रभावित होंगे, और प्रभु परमेश्वर की महिमा करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे प्रकाश जी, और धन्यवाद आपने अपना कीमती समय निकाला। जय मसीह की।
थैंक यू। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।